संवर हेतुओं में अंतिम जो चारित्र है उसकी चर्चा है। सूत्र 18 अध्याय 9 सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथा ख्यातमिति चरित्रम्। अत्र चोद्यते, यहां पर कुछ शंका समाधान कर रहे हैं। दशविधे धर्मे संयम उक्त, 10 प्रकार के धर्म में संयम बता दिया। सैव चारित्रम, वही चारित्र है। इति पुनर्ग्रहण में अनर्थकमिति, इसलिए चारित्र का फिर से यहां ग्रहण करना निरर्थक है, ऐसी शंका है। न अनर्थकम, आचार्य उत्तर देते हैं कि अनर्थक नहीं है। धर्मेन्तर्भूतम अपि चारित्रम अन्ते गृह्यते मोक्ष प्राप्ति ही साक्षात कारण ज्ञापनार्थम, धर्म में अंतर्भूत होते हुए भी चारित्र को अंत में ग्रहण किया जाता है क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का साक्षात कारण है, ये जानकारी देना है। सामायिक मुक्तम, सामायिक बदला चुके हैं, वह कहा दिग्देश अनर्थ दंड विरति सामायिक इत्यत्र, उस सूत्र में बतलाया था। तत् द्विविधम, सामायिक 2 प्रकार की, नियत काल मत मनियत कालन चेति, नियत काल मनियत कालन चे, नियत काल सामायिक और अनियत काल सामायिक, 2 प्रकार की। स्वाध्याय आदि नियत कालम, स्वाध्याय आदि करते समय एक निश्चित समय तक समता भाव रहता है, वो नियत काल सामायिक हो गई। ईर्यापथाद्यनियत कालम, और ईर्यापथादिक विहार में कहीं भी समता रखनी होती है वो अनियत काल की सामायिक होती है। माने सदा काल जिसमें समता रखी जाती है वो अनियत काल है, और फिर कुछ काल तक समता भाव रखते हैं वो नियत काल है। लेकिन सामायिक जिस प्रकार श्रावक, प्रतिमाधारी श्रावक करता है चारों दिशाओं की दिग्वंदना करके अथवा कृतिकर्म करके, 2 बार बैठकर नमस्कार करना, 12 बार आवर्त करना और 4 बार प्रणाम करना, बीच में कायोत्सर्ग करना, ये सारी विधि के साथ जो श्रावक सामायिक करता है उस विधि का उल्लेख साधु के आचरण प्ररूपक किसी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। आचार सार में भी नहीं मिला, मूलाचार में भी नहीं मिला, और भी साधु संबंधी जितने ग्रंथ हैं उनमें कहीं ऐसा विधान नहीं मिलता कि साधु को इस समय पर इस प्रकार बैठ के या खड़े होकर सामायिक करना चाहिए। त्रिकाल नियम का उल्लेख मिलता है, पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र में उत्तर पुराण में होता है कि अरविंद नाम के जो मुनिराज थे वो शिखर जी की यात्रा के लिए जा रहे थे, तो वन में जब उनका दोपहर का काल हो गया तो उस काल का साधु उल्लंघन नहीं करते, इसलिए वो ध्यान में बैठ गए। लेकिन ध्यान में बैठना अलग बात है, और सामायिक जैसे गृहस्थ करते हैं प्रतिमाधारी 3 बार, वैसा साधु के लिए कहीं भी ऐसा आगम में स्पष्ट विधान नहीं। सही बात, इसमें तो लिखा ना ईर्यापथ आदि अनियत कालम, चलते फिरते हर समय समता रखते हैं वही उनका अनियत काल सामायिक चरित्र है। और स्वाध्याय आदि नियत कालम, स्वाध्याय आदि में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, तो फिर वो उतने काल की सामायिक हो गई। अब ये इसमें आया था एक जगह शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान में, तो उनने उत्तर दिया था कि आचार्य श्री मंत्री संतरी आ जाए तो भी सामायिक में बैठ जाते हैं, ये तो उसका उत्तर नहीं था। प्रश्न ये था कि सामायिक साधु को करना चाहिए अमुक समय पर, उसका क्या प्रमाण है? तो ये कोई प्रमाण नहीं हुआ कि विद्यासागर महाराज जी बैठ जाते, विद्यासागर महाराज नमक नहीं खाते तो नमक अभक्ष हो गया क्या साधुओं के लिए? विद्यासागर महाराज बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं, लेकिन वो कोई जैन मार्ग हो गया क्या? वो उनकी व्यक्तिगत चर्या हो गई, वो जैन मार्ग के अंतर्गत हो सकती है, लेकिन वो सर्वसाधारण सब साधुओं के लिए नियामक कैसे हो सकती है? इसलिए भ्रामक उत्तर था वो। सही उत्तर तो जो शास्त्र में है वो बताना चाहिए। मूलाचार में ये भी बताया कि हाथ में ऐसे पिच्छी लेकर के सामायिक कर सकते हैं। फिर पिच्छी लेकर कैसे सामायिक करोगे? अब लोग तो यहां तक आपत्ति उठाते हैं कि कायोत्सर्ग हाथ में पिच्छी पकड़कर करते हैं तो फिर वो कायोत्सर्ग नहीं होगा, क्योंकि पकड़ने में जो काय का उद्यम है तो उसमें फिर उत्सर्ग नहीं हुआ काय का, काय छूट नहीं पाई, क्योंकि पिच्छी ऐसे हाथ में पकड़ी है। अब ऐसे लटकाई तो है नहीं, कोई हुक तो है नहीं हाथ में, ऐसे पकड़नी पड़ी पिच्छी कायोत्सर्ग के समय, तो इसका क्या मतलब हुआ? कायोत्सर्ग का अर्थ काय गुप्ती है ऐसा समझ कर ये भूल कर दी उन्होंने। काय गुप्ती अलग चीज है, जिसमें काय का पूरा निरोध हो जाता है। कायोत्सर्ग में ऐसे हाथ रख करके शरीर की तरफ से ममता को हटाया है, पिच्छी उपकरण मात्र है, उसके प्रति मूर्छा भाव है नहीं, उसको अगर हाथ में रखा है तो फिर अगर दोष भी मान ले तो वो इतना बड़ा दोष नहीं है कि उससे पूरा कायोत्सर्ग आवश्यक ही समाप्त हो जाए। 28 कायोत्सर्ग होते 24 घंटे के मुनि के चर्या में। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी है। तो सामायिक साधु को 3 बार बैठकर करना चाहिए, ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं मिलता। और शांति सागर आचार्य महाराज मध्य रात्रि को करते थे सामायिक। उनके एक सेवा करने वाले भक्त ने हमसे संस्मरणों के अंतर्गत बहुत सारी बातें बतलाई थी, तो वो मध्य रात्रि को सामायिक करते थे। और अगर कोई नहीं करते उनकी परंपरा में मध्य रात्रि को, तो उन्होंने सब उल्लंघन कर दिया जैन मार्ग का, ऐसा मानेंगे। शांति सागर आचार्य महाराज ने सिंह निष्क्रीड़ित तप किया था, और उनकी परंपरा में सब आचार्यों ने नहीं किया है, तो उन्होंने भंग कर दिया उनके क्रम को। वो जिसकी जितनी क्षमता है, उत्तर गुणों में कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है, मूल गुण तो नियम से करना पड़ेंगे सब साधुओं को, लेकिन उत्तर गुण जो जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे, उसमें कोई अतिरेक की या फिर कोई जितनी अपनी क्षमता से ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती। सामायिक में अगर ध्यान में बैठ रहे हैं दोपहर में तो अच्छी बात है, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो उनका षट आवश्यक के अंतर्गत सामायिक आवश्यक है ऐसा समझना कहीं आगम में तो मिलता नहीं है, इसलिए आगम सम्मत है ऐसा नहीं कह सकते। समता समारे का अर्थ क्या है? समता ही धारण करते हैं हमेशा, उसमें ये थोड़ी लिखा है कि सुबह दोपहर शाम समता धारण करते हैं साधु। और शिक्षा व्रत का क्या अर्थ होता है, अब इससे आप कल्पना करो। सामायिक शिक्षा व्रत का मतलब कि साधु जो 24 घंटे समता रखते हैं, उसका श्रावक 3 बार तो कम से कम अभ्यास कर ले। शिक्षा व्रत का अर्थ क्या हुआ? 3 बार तो अभ्यास कर ले, शिक्षा ले ले। अगर श्रावक जैसी मुनि करने लग जाए चर्या, तो फिर उसको शिक्षा व्रत में कैसे रख सकते थे सामायिक? तो ऐसी बात है। वैसे शिक्षा व्रत में 2 बार सामायिक होती है, और सामायिक प्रतिमा में 3 बार होती है, और आचार्य शांति सागर महाराज 4 बार करते थे। नहीं अच्छा है, लेकिन उसको मतलब इधर से मतलब कानूनन बनाना गलत है। और प्रायश्चित धरा दिया उसको जबरदस्त कि तुमने आज सामायिक नहीं किया, 4 उपवास करना बोले। कहां से 4 उपवास करना? या फिर कोई गृहस्थ लोग भी मिलकर के बैठ करके बोल देते हैं कि महाराज अब इस दोष का आपको प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। तो साधु बेचारे भोले हैं तो पूछेंगे कि भाई बताओ क्या प्रायश्चित करना चाहिए, तो फिर वो बोलते हैं कि हम लोग विचार करके बताते हैं, और 2-4 श्रावक लोग मीटिंग करेंगे और गुरु को प्रायश्चित देंगे। अरिका माता की भी मुनिचर्या है, शुल्लक शुल्लिका और एलक के लिए ठीक है, ये सामायिक शिक्षा व्रत भी है, सामायिक प्रतिमा भी, क्योंकि 11 प्रतिमाओं का पालन करना है उनको, उनकी बात अलग है, लेकिन बाकी मुनि अरिका की बात अलग होती है। बैठना चाहिए। इतरत्र पुनः समये न कृतं दोषाय तद् गुणाय कृतं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बताया कि सामायिक अगर 3 बार से ज्यादा कर लिया, 2 बार से अधिक कर ले, तो उसमें कोई दोष नहीं लगने वाला। तद् गुणाय कृतं, उससे गुण को ही लाभ होगा। तो क्या कहा है यहाँ पर, सामायिक चारित्र में स्वाध्याय आदि नियत कालम, ईर्यापद आदि अनियत कालम। स्वाध्याय आदि में समता रखी है तो नियत काल की सामायिक हो गई, क्योंकि स्वाध्याय 24 घंटे हो नहीं सकता। और फिर ईर्यापद आदि चलते फिरते समय, उठते बैठते समय, भोजन आदि के समय, हर समय समता रख रहे हैं तो वो उनकी अनियत काल सामायिक है। प्रमाद कृत अनर्थ प्रबंध विलोपे, प्रमाद कृत अनर्थ प्रबंध विलोपे सम्यक प्रतिक्रिया छेद उपस्थापना। प्रमाद द्वारा किए गए अनर्थ प्रबंध का विलोप करने का जहां प्रकरण आता है, वहां पर जो सम्यक प्रतिक्रिया होती है, प्रमाद के कारण कोई दोष लगा है तो उसका नष्ट नाश करने के लिए जो प्रायश्चित अधिक किया जाता है वो छेदोपस्थापना। विकल्प निवृत्तिर्वा अथवा विकल्पों से निवृत्त हो जाना, उसको भी छेदोपस्थापना माना गया है। परिहरणम परिहार, परिहरण का अर्थ परिहार है, परिहार यानी त्याग। प्राणी वधात निवृत्ति, प्राणी हिंसा से निवृत्ति होना, ये परिहार है। तेन विशिष्टा शुद्धिर, उस अहिंसा के कारण जो विशिष्ट शुद्धि उपलब्ध होती है, यस्मिन जिस चारित्र में, तत् परिहार विशुद्धि चारित्र, उस चारित्र का नाम है परिहार विशुद्धि चारित्र। अति सूक्ष्म कषायत्वात् सूक्ष्म सांप्राय चारित्र, जिस गुणस्थान में अत्यंत सूक्ष्म कषाय है तो उस अति सूक्ष्म कषाय के कारण जो चारित्र होता है उसको सूक्ष्म सांप्राय चारित्र, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कहते हैं। कषाय चारित्र नहीं है, कषाय सूक्ष्म है, इसलिए जो चारित्र है वो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। मोहनीयस्य निरवशेषस्य उपशमात् क्षयाच्च, मोहनीय कर्म का संपूर्ण उपशम अथवा संपूर्ण क्षय होने के कारण आत्मस्वभावावस्था अपेक्षा लक्षणम, आत्मस्वभाव में अवस्थित होने की अपेक्षा है लक्षण जिसमें। अथाख्यात चारित्रम, वही आख्यात माने जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा हुआ चारित्र, मतलब अपने रूप में अपने स्वरूप में रमण करना, यथाख्यात चारित्र है। पूर्व चारित्रानुष्ठाई भी, पूर्व काल में जो चारित्र का अनुष्ठान करने वाले मुनिराज हुए हैं उनके द्वारा आख्यातम जो प्रतिपादित हुआ है, न तत् प्राप्तम, लेकिन अभी तक जो प्राप्त नहीं हुआ, प्रांग मोह क्षयोपशमात्, प्रांग मोह क्षयोपशमाभ्याम, मोह के क्षय अथवा उपशम से पूर्व जो अभी तक प्राप्त नहीं हो सका इति, इसलिए उसको अथाख्यातम, अथाख्यात कहते हैं। अथ आख्यात, अब तक जो कहा था सुना था लेकिन प्राप्त नहीं किया था, उसको अब प्राप्त कर लिया तो वो अथाख्यात चारित्र कहलाता है। मोहनी कर्म का पूर्ण उपशम अथवा क्षय होने पर, यानी मोहनी कर्म की एक भी प्रकृति आत्मा में उदय को प्राप्त न हो, उस समय जो चारित्र होता है उसका नाम अथाख्यात चारित्र है। अभी आगे देखते हैं। अथ शब्दस्य अंतर्यार्थ अनंतर्यार्थ वृत्तित्वात्, अथ शब्द का अनंतर्यार्थ वृत्तित्वात् निरवशेष मोहक्षयोपशमानन्तरम् आविर्भवति इत्यर्थ, अथवा अथ शब्द का ऐसा भी अर्थ लेते हैं, अनंतर के अर्थ में उसका प्रयोग होता है, अथ माने अथानंतर, इसके बाद। तो मोहनी कर्म के क्षय अथवा उपशम के बाद जो चारित्र होता है उसका नाम अथाख्यात है। यथाख्यातम इति वा, आचार्य महाराज सब समाधान स्वयं करते हैं, अथवा इसको यथाख्यात भी कहते हैं। यथा जैसा आत्मस्वभाव, आत्मस्वभाव है अवस्थित है, अपने में अवस्थित है, तथैव आख्यातत्वात्, वैसा ही उस चारित्र को कहा होने के कारण, माने उस चारित्र का जो कथन है जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा ही उस चारित्र में प्रकट होता है, इसलिए उसका नाम यथाख्यात हो गया। इति शब्द परिसमाप्तो दृष्टव्य, ये जो सूत्र में इति शब्द आया ना आखिरी में, यथाख्यात मिति, वो इति शब्द जो है परिसमाप्ति में देखा जाता है। ततो उससे यथाख्यात चारित्रात् सकल कर्म क्षय परिसमाप्तिर भवति इति ज्ञायते। तो यथाख्यात चारित्र से इति माने वहां समाप्त हो जाता है, माने इतने इतने चारित्र का पालन करने के बाद अब यथाख्यात चारित्र में सब समाप्ति है कर्मों की, निष्ठापन हो गया। तो इति शब्द परिसमाप्ति में देखना चाहिए। तो यथाख्यात चारित्र उससे यथाख्यात चारित्र के कारण सकल कर्म क्षय परिसमाप्तिर भवति, सब कर्मों के क्षय की परिसमाप्ति हो जाती है इति ज्ञायते, ऐसा जाना जाता है। सामायिक आदि नाम अनुपूर्व वचनम उत्तर उत्तर गुण प्रकर्ष क्षापनार्थम क्रियते। सामायिक आदि का जो क्रम रखा गया है वो आगे आगे के चारित्र में गुणों की प्रकर्षता को प्रकट करने के लिए रखा गया है। माने सामायिक से अधिक गुण छेदोपस्थापना में, छेदोपस्थापना से अधिक गुण परिहार विशुद्धि में, परिहार विशुद्धि से अधिक गुण सूक्ष्म सांप्राय में, और सूक्ष्म सांप्राय से अधिक गुण यथाख्यात में है। बिल्कुल, क्योंकि गिर करके उठने में ज्यादा शक्ति लगती है। छेदोपस्थापना का अर्थ क्या है? छेद यानी कोई दोष आया, तो दोष आने के बाद फिर निर्दोष होना, उसमें जो पुरुषार्थ, उसमें जो विशुद्धि है वो उससे अधिक है। जो चलता ही नहीं है उसको तो गिरने का सवाल ही नहीं है। साइकिल सीखोगे तो घुटने फूटेंगे। आहा, अब कोई कहता है उक्तं चारित्रम, चारित्र बता दिया। तदनंतर मुद्दिष्टम यत् तपसा निर्जरा च इति तस्य इदानीं तपसो विधानम कर्तव्यमिति अत्र उच्यते। तो चारित्र के पश्चात कहा गया जो तपसा निर्जरा च एक सूत्र आया था, क्या दूसरे सूत्र में क्या कहा था? पहला सूत्र था आश्रम निरोध संवर, दूसरा था सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परीक्षा जय चारित्रयी ही, फिर तीसरा था सब तपसा निर्जरा च। तो तस्य उसका इस समय उस तप का विधानम कर्तव्यम, विधान करना चाहिए, इसलिए अत्र यहाँ पर कहा जाता उच्यते। तद विविधम, तप दो प्रकार का, बाह्यम आभ्यंतरंच, बाह्य तप और आभ्यंतर तप, ये शब्द दोनों बनते हैं आभ्यंतर और अभ्यंतर, व्याकरण से दोनों प्रकार के रूप बन जाते हैं। बाह्य, बहिरंग, बहिर, ऐसे तीनों शब्द हो सकते हैं। आभ्यंतर, अभ्यंतर, अंतरंग और अंतर, ऐसे शब्द बनते हैं। तत्प्रत्येकं षड्विधम, बाह्य भी छह प्रकार का, अंतरंग भी छह प्रकार का है। तत्र बाह्य भेद प्रतिपत्त्यर्थमाह, अब उसमें बाह्य तप के भेदों के जानकारी के लिए आह सूत्र कहते हैं। अनशनाव मौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेशा बाह्यं तपः। इस निर्जरा के प्रकरण में तो नहीं हो सकता, लेकिन बताया है कि ये बाह्य तप जो है बाहर से दिख जाता है, मिथ्या दृष्टियों को भी समझ में आ जाता है कि ये तप हो रहा है, इसलिए उसका नाम बाह्य तप है। बाकी निर्जरा के प्रकरण में ये बाह्य तप जो होगा वो तो भावलिंगी मुनि के होगा। अनशनाव मौदर्य, दृष्ट फलानपेक्षा, लौकिक फल की अपेक्षा जिसमें नहीं है, और संयम प्रसिद्धि रोगोच्छेद कर्म विनाश या रागोच्छेद, संयम प्रसिद्धि रागोच्छेद कर्म विनाश ध्यानागमाव वाप्त्यर्थम अनशनम, संयम की सिद्धि के लिए अनशन किया जाता है। लौकिक फल की अपेक्षा नहीं है लेकिन संयम की सिद्धि हो, क्योंकि भोजन हमेशा करते रहने से और कुछ उसमें तप न करने से इंद्रियां वश में नहीं रहती, इसलिए संयम की सिद्धि के लिए रागोच्छेद। लग जाएगा, और उसमें आया भी था कार्तिकेय अनुपेक्षा में तो था खुलासा कि मंत्र सिद्धि के लिए अगर आपने आहार नहीं लिया किसी दिन तो उसको अनशन तप में नहीं लिया जाएगा, वो मंत्र की विधि में आएगा, उसको तंत्र कहते हैं। मंत्र की आराधना विधि को तंत्र कहते हैं, अथवा किसी भी विधि को तंत्र कहते हैं। तंत्र तन से संबंधित होता है, यंत्र वचनात्मक होता है, वो कोई भी अक्षर हो सकता है या अंक हो सकता है यंत्र में, अथवा आकृति हो सकती है, और मंत्र जो होता है वो मन से एकाग्रता से किया जाना। वो प्रायश्चित में आ जाएगा, प्रायश्चित में एक तप नाम का प्रायश्चित है उसमें आ जाएगा, तो तप में वो अनशन ही होगा। तव सिद्धि नए सिद्धि, ये बताया था एक दिन हमने, जब सिद्ध भक्ति पढ़ते ना, तव सिद्धि नए सिद्धि संयम सिद्धि चरित सिद्धि है नाणम्य धनसणम्य सिद्धि सिरसाणम इंसानी। जो तप से सिद्ध हुए हैं, तप में कई प्रकार के तप हो जाएंगे, और फिर जो नए से सिद्ध हुए हैं, नए का अर्थ यहां पर नैगम संग्रह आदि नए नहीं लेना, नए का अर्थ होता है प्रायश्चित। प्रायश्चित करते करते जिनको केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त हो गया उनको भी नमस्कार करता हूं। गुरु महाराज ने प्रायश्चित दिया है, गुरु महाराज को अभी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वो अभी आचार्य है, लेकिन शिष्य ने प्रायश्चित करते करते अरिहंत पद प्राप्त कर लिया और सिद्ध पद प्राप्त कर लिया, उनको नमस्कार हो। नए सिद्ध संयम सिद्ध, फिर ये जो संयम है पिछले जो चारित्र बतलाए हैं उनमें से परिहार विशुद्धि से कोई मुनि आगे चले जाते हैं, कोई सामायिक से, कोई छेदोपस्थापना से, तो वो जो भी विवक्षा होगी संयम सिद्ध चरित्र सिद्ध। अच्छा, संयम में फिर प्रधानता ले सकते हैं, अथवा संयम के जो भेद हैं, आठ प्रकार की जो शुद्धियां होती है संयम की रक्षा के लिए होती है। हाँ, वो तो आए, तो फिर अपेक्षा उसमें संयम किसको कहते हैं? संयम समिति सहित जो व्रत है उसको संयम कहा है। धवला की 14वीं पुस्तक में लिखा है कि संयम में और व्रत में क्या अंतर है, तो बोले कि समितियों के साथ अगर व्रत होते हैं तो फिर उसका नाम संयम है, और अकेले व्रत होते हैं तो उनको व्रत कहते हैं। नहीं, वो तो अपेक्षा लगाएंगे, पूर्व नए की अपेक्षा से लगाना, तो वो तो कितने सारे भंग बनाए, लास्ट आखिरी सूत्र जो है पूरे तत्वार्थ सूत्र का, उसमें सब बनाया है भंग। तो संयम की सिद्धि के लिए राग का उच्छेद करने के लिए, माने राग को तोड़ने के लिए, और कर्मों का विनाश करने के लिए, ध्यान के लिए, और आगम की प्राप्ति के लिए, स्वाध्याय के लिए अनशन किया जाता है। फिर संयम प्रजागर दोष प्रशम संतोष स्वाध्याय आदि सुख सिद्ध्यर्थम अवमौदर्यम। संयम का प्रजागर, प्रजागर का अर्थ क्या है? जागृत होना चाहिए। संयम को प्रजागर करने के लिए, उजागर करने के लिए, जागृत रखने के लिए, और दोषों का प्रशम करने के लिए, कुछ दोष आ जाते हैं ना, वात पित्त कफ संबंधी, तो अगर भोजन कम लो तो फिर वो दोष शांत हो जाते हैं उनोदर। फिर संतोष अथवा उनोदर करने से क्या होता है कि अब जैसे भरपेट भोजन लेंगे तो फिर कभी कभी असंतोष भी होता है, लेते जाओ लेते जाओ, फिर उनोदर से क्या होगा कि जितना ले रहे हैं बस उतने में संतोष रखो। और स्वाध्याय आदि कि सुख सिद्धि के लिए, सुख सिद्धि का मतलब कठिनाई ना हो। अब अनशन करोगे तो फिर बिल्कुल भूखा रहने के कारण कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन थोड़ा भोजन ले लेने से कठिनाई नहीं होती, इसलिए उनोदर करते हैं। भिक्षार्थिनो मुने रेकागार आदि विषय है संकल्प, भिक्षा के इच्छुक जो साधु हैं उनका एकागार आदि विषय है, एक घर, दो घर, तीन घर, किनके? हाँ वही तो, हाँ वही 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 लगाया। नहीं नहीं, अनशन में क्या होता है कि सुख सिद्धि नहीं होती, अनशन में कठिनाई होती, लेकिन उनोदर में सुख सिद्धि होती, ये बताया। तो भिक्षा के इच्छुक जो साधु है उनका एकागार आदि विषय है, एक घर तक अगर कोई पड़गान करेगा, यहां से बाहर निकलेंगे तो वहां चले जाएंगे, और आदि से पांच घर, दस घर, बीस घर, तो वहां तक के अगर पड़गान हो गया तो करेंगे, और अगर उसके बाद कोई पड़गान के लिए खड़ा होगा, यहाँ कोई नहीं होगा, तो वापस आ जाएंगे। ऐसे कोई भी संकल्प ले लेते हैं, आदि शब्द से फिर संकल्प के इतने भेद हैं कि उसमें मिट्टी तक के बर्तन लेकर पड़गान करने वाले से आहार लेंगे, ऐसा करके संकल्प दिया हुआ था। उसमें भेदों में कई भेद प्रभेद होते हैं। नहीं 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 ऐसा कठिन नहीं लिए थे कभी। जैसे उदाहरण, हमने दो कलश लिए तो वो नहीं मिली, तो अब उसको कठिन कहें या सरल कहें? वो तो क्या होता है कि साता का उदय होता है तो फिर कोई चीज सुखपूर्वक उपलब्ध हो जाती है, अंतराय कक्षोक्षम, और अगर न हो तो फिर सरल चीज भी मिलना मुश्किल हो जाता। अब दो कलश नहीं मिले हमें मान लो, तो फिर उसको कठिन कैसे कहें? दो कलश कोई कठिन चीज है? हाँ, ललितपुर में एक बार बहुत कठिन नियम हो गया था। वैसे हमें उस समय इतना आभास नहीं था कि ये नियम इतना कठिन होगा, लेकिन जब 150 चौकों में नहीं मिला तब लगा कि ये नियम कठिन ही होगा तो उस दिन आहार नहीं हो पाए थे। ये तो हमें मालूम था कि अभी नेक्स्ट यही प्रश्न आने वाले। नियम यही था कि सिर्फ भाई भाई लोग पड़गान करेंगे तो वहां जाएंगे, तो वो 150 चौकों में कहीं भी ऐसा स्थान नहीं था जहां सिर्फ भाई भाई लोग पड़गान करने वाले, कोई बहन या माता रहती थी कहीं ना कहीं। तो चिंतावरोधो इस प्रकार से अपने मन को अवरुद्ध कर देना कि बस इस परिस्थिति में ही आहार लेंगे, ये भी एक तप है, और ये तप उत्तर गुण है। ये अगर साधु न करे तो उनके साधुत्व में दोष नहीं है, मूल गुण में कोई आपत्ति नहीं है। पर इसको करने से क्या होता है कि एक दृष्टि से देखा जाए तो सरल हो जाता है मार्ग, राग द्वेष से बच जाते हैं। जैसे मान लो दो चौके हैं, अब दो चौकों में से भी अपन छंटाई करो तो फिर राग द्वेष होंगे, तो फिर ये सोच लिया कि भाई इस दिन पहले नंबर पर, इस दिन दूसरे नंबर पर जाएंगे। कोई ऐसा व्यवस्थित क्रम नहीं रखना, नहीं तो श्रावक तो होशियार है वो समझ जाएंगे कि आज दूसरा नंबर है। कोई भी ऐसा क्रम रख लिया कि आज पहले में जाएंगे या दूसरे में, पहला या दूसरा कोई भी हो सकता है, अपने को क्या मालूम यहां से कि पहले नंबर पर कौन है दूसरे नंबर पर कौन है। तो ऐसे कोई भी संकल्प लेकर के निकलते हैं तो फिर राग द्वेष से निवृत्ति होती है और तप से निर्जरा भी होती है, और ये तप क्षुल्लक अवस्था में किया जा सकता है। एक बार एक बालक पढ़ करके आया, स्वाध्याय करके आया, छोटा बालक था, मतलब नौवीं दसवीं में पढ़ने, नौवीं या आठवीं में पढ़ता था। उसने बोला कि आप वीरचर्या क्यों करते हैं? हमने बोला कि ये वीरचर्या कहाँ से तुमने सीखा? फिर बोले कि आया था कि क्षुल्लक लोग वीरचर्या नहीं कर सकते। तब फिर हमने उसको उत्तर दिया कि हम वीरचर्या नहीं करते, हम वृत्ति परिसंख्यान करते हैं। वीरचर्या का अर्थ ये होता है कि ऐसे नियम लेकर के निकलना आहार के लिए कि जो मिलना लगभग असंभव हो, लगभग असंभव। जैसे बैल के सींग पर गुड़ लगा हो तो हम आहार लेंगे शांति सागर महाराज जी को, 8 दिन बाद मिला कटनी में नियम, ये वीरचर्या कहलाती है। अथवा अगर आज हम तभी पड़गाए जाएंगे जब हमें कहीं बीच में सांप दिखेगा, ये वीरचर्या है। अथवा और भी कोई ऐसे नियम ले सकते हैं जो बहुत कठिन नियम है। और सामान्य नियम क्या है कि कलश की संख्या है, अथवा घर की संख्या है, अथवा पड़गान करने वाले की सम या विषम संख्या है, अथवा और भी कोई इस प्रकार भाई बहन खड़े हैं तो हम जाएंगे, या फिर जैसे अभी हमने जो बोला था कि जहां सिर्फ भाई भाई लोग खड़े होंगे वहां जाएंगे, ये सब वृत्ति परिसंख्यान है, ये वीरचर्या नहीं है। तो वृत्ति परिसंख्यान माशा निवृत्त्यर्थम अवगंतव्यम, इससे आशा की निवृत्ति हो जाती है। आशा यानी किसी दातार संबंधी कोई आशा फिर मन में नहीं रह जाती, दातार संबंधी या फिर किसी के भी बारे में। आशा के बहुत भेद हो सकते हैं। अगर हमारे घर आहार हो गया तो हम आपको शिखर जी की वंदना कराएंगे, यद्यपि है मतलब तीर्थ वंदना की आशा, लेकिन फिर भी उसमें ये जो शर्त आ गई आहार दान वाली, तो फिर ये साधु के लिए इंद्रिय दर्प निग्रह निद्रा विजय स्वाध्याय सुख सिद्ध्या द्यर्थो घृतादि वृष्य रस परित्यागश चतुर्थन तपः। चौथा तप जो है घी अधिक जो वृष्य रस है, इंद्रियों के मद को बढ़ाने वाले रस हैं, उनका परित्याग करना, रस परित्याग तप है। इससे क्या होता है, इंद्रियों के दर्प का निग्रह होता है। इंद्रियों का दर्प यानी इंद्रियों जो भड़कती हैं वो शांत रहती, वश में रहती है, निद्रा पर विजय प्राप्त होती है। दर्प यानी अभिमान है, मद है, फिर निद्रा पर विजय प्राप्त होती है, क्योंकि सभी रस खाने से बहुत नींद गहरी आती है और ज्यादा देर तक के आती है। आंख खुलने के बाद भी लगता है कि और सो लो थोड़ा 10-15 मिनट, तो इसलिए रस छोड़ने से निद्रा पर विजय प्राप्त होती है। स्वाध्याय की सुख सिद्धि होती है, यानी स्वाध्याय सुखपूर्वक सिद्ध होता है। सब कुछ खा करके बैठेंगे तो स्वाध्याय के बीच में भी प्रमाद आने लग जाता है कि चलो अब बंद करो बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा होता है। फिर शून्यागारादिषु विविक्तेषु जंतु पीड़ा विरहितेषु संयतस्य शय्यासन मां बाधात्य ब्रह्मचर्य स्वाध्याय ध्यानादि प्रसिद्ध्यर्थम कर्तव्यमिति पंचमं तपः। शून्य अगार आदि में जो कि विविक्त है, विविक्त यानी पवित्र है, विविक्त के दो अर्थ होते हैं, पवित्र और विविक्त का अर्थ एकांत निर्जन भी होता है, तो निर्जन भी ले लो जहां पर कोई जीव जंतु नहीं है, और जंतु पीड़ा विरहितेषु जहां जीवों को पीड़ा भी नहीं होती, उन स्थानों पर संयत जो शय्या और आसन मानते हैं, शयन करते हैं अथवा आसन लगाकर तप करते हैं, तो उससे क्या होता है, आबाधात्य, आबाधाओं का अत्यय होता है, माने ध्यान और स्वाध्याय में मन बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अड़चन के तल्लीन हो जाता है। क्योंकि एकांत स्थानों पर चले जाएंगे तो वहां पर जो ध्यान लगेगा वो शहरों में और भीड़ भाड़ में संभव नहीं है। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की भी परीक्षा होती है। वास्तव में शील की निर्मलता एकांत में परखी जाती है। भीड़ भाड़ में तो सभी लोग अपने मर्यादा में रहते हैं। किसी ने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा है ब्रह्मचर्य के बारे में, अवसर के अभाव की सुविधा में पलने वाला संयम ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य तो अपनी मानसिक लालसा पर विजय प्राप्त करने का नाम है। कल हमने जो बात कही थी ब्रह्मचर्य के बारे में, यदि आपकी स्मृति में हो, क्या अद्भुत बात है कि उस बगीचे के दरवाजे पर उस व्रती ने जीवन भर के लिए ताला लगा दिया कि न वहां के फूलों की तरफ हमें दृष्टि डालनी है, न उसकी आकांक्षा करनी है, वो हमारा विषय ही नहीं है, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। कोई सामने आ जाए और आप संघर्ष कर रहे हो, मन को रोकने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप इच्छाओं से लड़ रहे हो, नहीं, इच्छाओं को छोड़ने का नाम है ब्रह्मचर्य। वो है ही नहीं मेरा विषय। सब जिसकी नजरों में नारी नारी है वो काहे का ब्रह्मचारी है, वो तो सारा संसार बस माता पुत्री और बहन का एक स्वरूप बन गया है, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। और इसकी विशुद्धि की भी कल चर्चा की थी हमने कि जो इतने निर्मल ब्रह्मचर्य के धारी होते हैं देवता उसके अनुचर बन जाते हैं, उसके सेवक हो जाते हैं स्मरण मात्र से। देखो अभी आज दोपहर की जो कथा है उसमें देखिएगा, शील की जो कथा है सती रैन मंजूषा के ऊपर जो उपसर्ग आता है धवल सेठ का, उसमें किस प्रकार से क्या होता है, अभी सस्पेंस खत्म नहीं करना, जो पहली बार सुन रहे होंगे उनको एक अलग आनंद आएगा। स्वाध्याय और ध्यान आदि की सिद्धि के लिए कर्तव्य करना चाहिए विविक्त शय्यासन, ये पंचमन तप है, पांचवा तप है, अद्भुत है ये तप। इसमें भय पर भी विजय प्राप्त हो जाती है, एकांत स्थानों पर रहने से भय पर भी विजय प्राप्त हो जाती है। मुक्तागिरी में जाकर बैठ गए, कहीं कुंडलपुर में जाकर के बैठ गए किसी एक स्थान पर, कई बार सर्प आ जाता है, किसी को क्या पता, कैमरा वाले तो जब भीड़ भाड़ रहती है फिर जब उनको कुछ काम रहता है तब निकलते हैं, और जब सांप आकर के चले जाते हैं तब वो कैमरा वाले पहुंचते हैं, कई बार ऐसा होता है। क्या अब उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करना चाहते, हमारी व्यक्तिगत चर्चा यहाँ नहीं है। आतप स्थानम वृक्षमूल निवासो निरावरण शयनम बहुविध प्रतिमा स्थानम इत्येवमादि काय क्लेश तत्षष्टम तप, ये छठा तप है। कायक क्लेश, आतपस्थान धूप में खड़े रहना, वृक्ष मूल निवास वृक्ष के मूल में बरसात के समय निवास करना, निरावरण शयन बिना किसी आवरण के शयन करना ठंड के समय, बहुविध प्रतिमा स्थानम और अनेक प्रकार का जो प्रतिमा स्थान है, प्रतिमा स्थान यानी प्रतिमा योग धारण करना, एक पैर से खड़े हो गए, अथवा और भी अनेक प्रकार की मुद्राएं, वीरासन है, उत्कुटिक आसन है, कई प्रकार के आसनों में विराजमान हो गए, ये सब कायक क्लेश नाम का छठा तप है। तत्किमर्थम, कायक क्लेश क्यों करते हो? तो बोले देह दुख तितिक्षा सुखानभिश्वंग प्रवचन प्रभावनाद्यर्थम। कायक क्लेश का उद्देश्य क्या है? देह दुख तितिक्षा, शरीर के कष्ट को सहन करने की क्षमता आती है। कायक क्लेश करने से शारीरिक कष्ट को सहने की क्षमता जागृत होती है, और सुखानभिश्वंग सुख के प्रति आसक्ति टूट जाती है। काय क्लेश करने से सुख की जो आसक्ति है वो टूट जाती है। और प्रवचन प्रभावनाद्यर्थम, जैन धर्म की प्रभावना आदि भी होती है काय क्लेश से। परिषण स्यास्य को विशेष, तप में और परिषय में क्या अंतर है? तो आचार्य कहते हैं यदृच्छेपनिपतितः परिषः, जो अपने आप आया हुआ है वो परिषय है, और स्वयं कृत कायक क्लेश है। कायक क्लेश जो है स्वयं किया है वो कायक क्लेश है। बाह्यत्वमस्य कुतः, इन छह तपों को बाह्य क्यों कह दिया, इसमें बाह्यपना कहां से आया? तो बोले बाह्य द्रव्यापेक्षत्वात् पर प्रत्यक्षत्वाच्च बाह्यत्वम्, ये बाह्य पदार्थों की अपेक्षा रखता है और पर प्रत्यक्ष होता है, यानी दूसरे लोग देख सकते हैं इसको, जान सकते हैं कि ये तप चालू है इनका, इसलिए बाह्यपना है। अभ्यंतर तपो भेद प्रदर्शनार्थम आह, अब देखिए यहां पर अभ्यंतर शब्द लिया ना, पहले आभ्यंतर शब्द था। अभ्यंतर तपश्चरण के भेद को प्रदर्शित करने के लिए कहते हैं प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानानुत्तरम। ये छह तप अंतरंग तप, कथमस्य अभ्यंतरत्वम, इन तपों का अंतरंगपना कैसे सिद्ध होता है? तो बोले मनोनियमनार्थत्वात्, मन का नियमन होने के कारण, या मन का नियमन करने के लिए होने से, यानी मन इनसे वश में होता है, मन शांत होता है, इसलिए प्रमाद दोष परिहार प्रायश्चित्तम, प्रमाद जनित दोषों का परिहार यानी त्याग प्रायश्चित्त है। पूज्येश्वनादरो पूज्येश्वादरो विनय, पूज्य जनों के प्रति आदर भाव विनय है। काय चेष्टया द्रव्यांतरेण चोपासनम वैयावृत्यम, अपने शरीर की चेष्टा द्वारा और अन्य पदार्थों के माध्यम से, अन्य द्रव्य माने तेल है अथवा कोई लेप है अथवा और कोई साधन, एक्यूप्रेशर के कुछ साधन हो सकते हैं, इनके माध्यम से चोपासनम दूसरे साधुओं की सेवा करना, उपासना करना वैयावृत्यम, वैयावृत्त तप है। द्रव्यांतरेण कोई अन्य द्रव्य द्वारा, तेल आदि हो जाएंगे उसमें बिल्कुल, मिट्टी है, पानी है, तेल है, कोई भी चीज जिससे साधु की वेदना दूर हो सकती हो उसके माध्यम से। लेकिन वो अगर साधु करेंगे तो साधु के योग्य करेंगे, और गृहस्थ करेंगे तो गृहस्थ के योग्य करेंगे। जैसे मान लो कान में गर्म करके तेल डालना है, तो गर्म करने का कार्य साधु नहीं कर सकते, तेल डालने का कार्य साधु कर सकते हैं। तो गर्म गृहस्थ करेगा और डालने के लिए साधु डाल सकते हैं अथवा गृहस्थ भी डाल सकता है। ज्ञान भावना लस्य त्याग स्वाध्याय, ज्ञान की भावना के साथ साथ आलस्य का त्याग रखना, मतलब ज्ञान की भावना अंदर होना चाहिए और साथ में आलस्य का त्याग कर देना, इसका नाम स्वाध्याय है। बिल्कुल सही बात है, आलस्य में स्वाध्याय हो ही नहीं सकता, सिर्फ सुनना मात्र स्वाध्याय थोड़ी, अटेंटिव होकर के सुनने का नाम स्वाध्याय है। सावधानी पूर्वक उसको ग्रहण करना है, समझना है। आत्मात्मीय संकल्प त्यागो वित्सर्ग, मैं और मेरा इस प्रकार का जो संकल्प है उसको छोड़ देना वित्सर्ग है। फिर चित्त विक्षेप त्यागो ध्यान, मन के राग द्वेष को छोड़ देना या मन की चंचलता को छोड़ देना ध्यान है। तद भेद प्रतिपादनार्थमाह, अंतरंग तप के भेदों का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथा क्रमं प्राग ध्यानात्। ध्यान से पहले जो तप है ना पांच, ये तप जो है मोक्ष विनय के अंतर्गत है। इसमें यहां मोक्ष विनय को लेना, क्योंकि विनय के पांच भेद हैं, लोकानुवृत्ति विनय, अर्थ विनय, काम विनय, भय विनय और मोक्ष विनय। तो यहां पर विनय जो है वो अर्थ विनय, काम विनय और भय विनय तो सवाल ही नहीं। बाकी जिनेन्द्र भगवान की पूजा अर्चना को लोकानुवृत्ति विनय कहा गया है। अयजनो ब्राह्मण और अस्वाध्याय देवानाम, ऐसे दो सूत्र हैं कि जो भगवान की पूजा नहीं करता वो आदिनाथ भगवान का ऋणी होता है, और जो स्वाध्याय नहीं करता वो चौबीसों तीर्थंकरों का ऋणी होता है। इसलिए पूजा और स्वाध्याय करना चाहिए, एक ऐसा सूत्र है। तो वो तो बताया है इसमें कि साधु सबके लिए विनयपूर्ण व्यवहार करते हैं। अभी तो बहुत विस्तार से उसका आया था, विनय तप का वर्णन था, तो उसमें बताया था कि असंयमी के भी विनय करते हैं साधु। कैसे विनय करते हैं? तो विनय का मतलब मोक्ष विनय नहीं करेंगे, वो उसका अनादर न करना और यथायोग्य उसके साथ मधुर संभाषण आदि करना, ये विनय हो गए। आर्यिका की विनय करेंगे, ऐसा भी लिखा उसने, आर्यिका शब्द दिया है, मूलाचार में सब लिखा है। असंयमी की विनय, आर्यिका की विनय, शिष्य की विनय, साधु की विनय, उपाध्याय की विनय, आचार्य की विनय, अरहंत सिद्ध की विनय, सबकी विनय होती है। विनय का अर्थ क्या होता है? यहां तो पूज्यों में आदर भाव रखना विनय है, ये विनय तप है। फिर सामान्य विनय के अंतर्गत उनका व्यवहार है। तो नौ भेद प्रायश्चित के हैं, चार भेद विनय के हैं, दस भेद वैयावृत्ति के हैं, पांच भेद स्वाध्याय के हैं और दो व्युत्सर्ग के हैं। यथाक्रम वचनात् नव भेदम प्रायश्चित्तम विनय चतुर्विध वैयावृत्तिम दशविधम स्वाध्याय पंचविध द्विभेदो वित्सर्ग इति अभिसंबध्यते। प्राग ध्यानादिति वचनम ध्यानस्य बहुवक्तव्यत्वात् पश्चात् वक्ष्यते इति। ध्यान का बाद में कथन करना क्योंकि थोड़ा ध्यान का विस्तृत वर्णन है, इसलिए अभी यहां पर प्राग ध्यानात् यानी ध्यान से पहले जो पांच तप है उनके भेद बता रहे हैं। आद्यस्य भेद स्वरूप निर्जिन्यानार्थमाह, सबसे पहला जो प्रायश्चित तप है उसके भेद और भेदों का जो स्वरूप है उसकी जानकारी कराने के लिए आह सूत्र कहते हैं। आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। आलोचन शब्द है, आलोचना हिंदी में है, आलोचन संस्कृत में है। सूत्र में आलोचन ही है, टीका भी देख लो। तत्र गुरवे प्रमाद निवेदनम दश दोष विवर्जितम आलोचनम। कहा? नहीं नहीं नीचे देखो ना, आलोचनम लिखा टीका में देखो। तत्र गुरवे, आलोचना का क्या अर्थ है कि गुरु के लिए प्रमाद निवेदनम, अपने प्रमाद का निवेदन करना, और कैसा निवेदन करना? दश दोष विवर्जितम, आलोचना के दस दोष से रहित होकर के, आकंपी अनुमानित आदि जो दस दोष पहले आ चुके, दृष्ट बादर्श आदि, उनको छोड़कर गुरु के सामने अपने प्रमाद को, अपने दोष को प्रकट करना, इसका नाम आलोचना है। आलोचनम हिंदी में आलोचना कहते हैं। फिर मिथ्या दुष्कृताभिधानम, मिथ्या दुष्कृताभिधानाद दभिव्यक्त प्रतिक्रियम प्रतिक्रमण। मिथ्या और दुष्कृत, इन दो शब्दों के कारण अभिव्यक्त की गई है प्रतिक्रिया, जिसमें उस प्रायश्चित का नाम है प्रतिक्रमण। दोष हो गया, अब दोष होने के बाद में इन दो शब्दों के द्वारा उसका निवारण करने के लिए मिथ्या में दुष्कृतम, मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा